प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
परमात्मा का नाम आपको दिया जाता है, आपको नियम बताए जाते हैं। यदि आपने भगवान पाना है और परमात्मा से लाभ लेना है तो इन नियमों का आजीवन पालन करना होगा। अगर आप नहीं कर सकते और आपने ये ब्रांड मार्टी करवानी है तो आपकी मौत। ये नियम ऐसे नहीं जो आप नहीं कर सकते। मानता हूं ये कुछ डिफिकल्ट इस कारण से हो गए कि अन्य समाज इन नियमों के विरुद्ध ही चल रहा है, और एक घर में दो एक या दो सदस्य उपदेश लेता है उसको कुछ दिन दिक्कत अवश्य आएगी, क्योंकि वो विरोध बहुत करते हैं। करने दो, परमात्मा तभी निकट रहेगा आप भगवान की मर्यादा पर खरे उतरोगे। नियम टूट जाने से बहुत दुख होगा। जैसे सीता जी को श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने बता दिया था कि हम जैसे वो जंगल में थी, एक कुटिया बना रखी थी और वहां एक रावण का मामा मारीची एक मृग का रूप धारण करके वहां बोई गई जो बाड़ी बगीची थी सीता जी की उसको तोड़ रहा था, सोने का मृग बन गया। तो सीता जी ने उस मृग की इच्छा व्यक्त की थी, मुझे जीवित या मृत लाकर दो, हठ कर लिया। तब उसको जाते समय लक्ष्मण जी ने कहा था कि ये मैं इस कुटिया के चारों तरफ एक मंत्रित रेखा खींच के जा रहा हूं, इस रेखा को पार मत करना, इसे पार करोगी तो या जंगली जानवर या कोई निकम्मी आत्मा आपके आपका आपको हानि कर सकती है, इसके अंदर कोई नहीं आएगा। अब सीता ने उस समय तो स्वीकृति दे दी, फिर उसी समय रावण आया एक साधु रूप बनाकर, और जो ही रावण अंदर कुटिया के निकट आने लगा उस रेखा को पार करना चाहा तो उसमें से एकदम अग्नि की लपट निकली जैसे उसको भस्म कर देंगी, तो 10 कदम दूर रावण दौड़ के गया बैक, और सीता से कहा कि माई भिक्षा दो। तो सीता ने कहा था कि आप यहां आके ले जाओ कुटिया के पास। जब वो आगे आने लगा तो एकदम रेखा में से लक्ष्मण वाली रेखा से एकदम वो लपटे निकली तो भाग के दूर चला गया। कहने लगा माई तूने ये क्या कर रखा है, मुझे मरवाना चाहती थी, मुझे तुझे श्राप दे दूंगा, यहां आकर दे भिक्षा देनी है तुम। अब सीता जी ने सोची साधु महात्मा है कि क्या दिक्कत आ है, अभी जल्दी सी देकर आटा वापस आ जाऊंगी, क्या पति को और देवर को पता थोड़ा चलेगा। अब वह तो उसकी नालायक सोच थी, वह बोड़ी बूझ थे जो ये कह के गए थे वैसे बाहर मत निकलना, तो उस फट गई लेक आटर रेखा से बाहर गई थी, रावण ने ठठा ली और पटकी वहां नौलखा बाग में जाके अपनी ब्रान माटी करवाई, लाखों करोड़ों व्यक्ति मरवा दिए उसे एक नालायक ने जरा सी मर्यादा उल्लंघन करके। तो पुण्यात्माओं ये परमेश्वर का मार्ग है, काल के जाल से आपने निकलना है तो परमात्मा की मर्यादा से बाहर नहीं जाना। बाहर जाओगे तन्वे दुर्गति आपकी बनी रहेगी, परमात्मा आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि परमात्मा और काल का एक अनुबंध हुआ है, वो आने वाले समय में बताएंगे कि जब लग हंसा हमारी आना काल लगे ना तेरा बाणा, कि जब तक मेरी प्यारी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेंगी तब तक काल तेरा अटैक, तेरे द्वारा छोड़े गए जो चोट है, किसी का बेटा मार दे, किसी की बेटी मार दे, किसी की टांग कटगी, किसी का कैंसर होगी, किसी के और हानि कर दी, कि तब तक जब तक वो हंस मेरी मर्यादा में रहेगा तेरा कोई तीर बाण मेरे हंस पर नहीं लग सकता। वो सुरक्षा कवच दे दिया भगवान ने इन नियमों का, और इनको तोड़ोगे तो लक्ष्मण वाली रेखा तुमने तोड़ दी, फिर काल तुम्हारा कुछ भी कर सकता है। तो क्या बताते हैं, तो गुरुदेव को आपने सपोज लो गुरुदेव भगवान है। अब जब आप यहां से जाओगे तो वहां परमात्मा जो है वो तेजो में शरीर युक्त है, करोड़ों सूर्य करोड़ चंद्रमा उनकी रोशनी जितना उनके एक रोमकूप का प्रकाश है, तो वो उसको नहीं पहचान सकोगे आप। वहां वो परमेश्वर अन्य रूप में इस दास के रूप में आपके समक्ष होगा। अब जैसा आपका व्यवहार बर्ताव अंदर में दोष या पवित्रता होगी तो यहां परमात्मा का एक रेस्ट वो है राजदूत भवन है, वहां रखेगा त्रिकुटी पर। उस त्रिकुटी पर जाकर के जब यहां से आप त्रिकुटी तक तो पहुंच जाओगे, वहां से फैसला होगा। वहां आपके मन में जैसा भी दोष होगा या आपके अंदर समर्पण भाव होगा, निष्कपटता होगी, उनको वहां सिलेक्ट कर लिया जाएगा। वहां तो आपके चेहरे पर अपने आप लिख दिया जाएगा, वहां किसी पूछने की आवश्यकता को ना, मैं के गंदापन कर रहा था, कितनी मेरी गंदी सोच थी, मेरा किस प्रकार अच्छा भाव, तो वह अपने आप आपके मस्तिष्क पर कंप्यूटर की तरह आ जाएगी, जैसे डिस्प्ले पर आ जाती। तो उसी समय आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और कई हजार लाखों वर्षों तक आपको फिर परमात्मा नहीं सिलेक्ट करेगा, यानी वापस नहीं संभालेगा। ये कोई बालकों का खेल नहीं, और कोई मैं रोजी रोटी खातिर डमडमे करने नहीं लगा। परमात्मा की दया हुई, इस ज्ञान से परिचित हुआ, इस परमात्मा का यहां असंख्यों जन्मों से हम भटक रहे हैं, भुगत रहे हैं, ऐसे दीर्घ रोग को कटवाने के लिए हमने परहेज जरूर रखने पड़ेंगे। यदि हम परहेज नहीं रखेंगे तो औषधि काम नहीं करेगी, तो इसलिए परहेज रखना अति आवश्यक है, नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। बीड़ी शराब मांस तमाखू कभी छूना, ना पीना, ना पिलाना, ना किसी का सहयोग देना। चोरी ठगी जारी रिश्वत खोरी दो नंबर का काम भूल के नहीं करना। परमात्मा देगा उस तो पूरा पटेगा, उससे आपके घर में सुख होगा, आपके शरीर में सुख होगा। आपने किसी को लूट कर दो नंबर ठग ठग के पैसे इकट्ठे कर भी लिए, वो ऐसी दुर्गति तो जाएंगे, रोए भी घर पैसे भी जाएंगे। मैंने ऐसा निकम्मा बालक पैदा हो जाए लड़का, वो सारे पैसे न बर्बाद करे और पिताजी देख कर रोए और फिर बेटा भी मर जा। एक बता रहा था दास ने, ये नाम नहीं लिया था उसे पहले की बातें, वो कह रहा था, रो रहा था कि मैं रिटायर होया मिलिट्री से, और मिलिट्री में उसका एक ऐसे स्थान पर पोस्टिंग रही तकरीबन के जहां सेल और परचेज पूरी प्लाटून की होया करती थी। तो उसने खूब इधर उधर की जुगाड़ जोड़ जोड़ के काफी पैसे लाया। तो उसने, उसका लड़का एक का बेटा था, उस बेटे ने आते ही कहा, कहने लगा, पिताजी मैं तो जीप लूंगा। अब इकलौता बेटा जिद कर ली, जवान हो रहा था, कॉलेज में जावा था, जीप ले ली, फिर एक पिस्टल ले लिया है, फिर उसने अपने साथियों के साथ शराब पीने लग गया, कि तो बकवाद कराया हुआ, कि तो झगड़ा कर ले, उसके मुकदमे शुरू हो गए और आखिर में एक्सीडेंट में मृत्यु को प्राप्त हो गया। जिस बेटे के लिए उसने अपना धर्म कर्म बिगाड़ा और रोया, पैसे वो फूका है, बेटा पैसे फूका, रो घर बैठ कर कोण में बैठ कर रोए, मेरा नाश करेगा। अब वो पैसा रहा नहीं और बेटा रहा नहीं, जिसकी खातिर इतने पाप इकट्ठे किए, और वो पाप न्यो के न्यो रह गए। तो पुण्यात्मा, परमात्मा दो रोटी समय पर देवे, घर में शांति शरीर में सुख, इससे अधिक नहीं मांगना चाहिए। जिसके पास मान ले अरब और खरब पैसे हैं, एक दो फैक्ट्री भी है, कल न मृत्यु हो जा, कुत्ता बनकर उस फैक्ट्री की गली में उसके कमर लाकर बैठेगा, अंदर कोई प्रवेश ना करने दे उसको। तो हमने सतलोक जाकर के अपना ये स्थाई स्थान प्राप्त करना, उसके लिए परमात्मा कहते हैं जय इव के सतगुरु मिले सब दुख आखों रो चरणों ऊपर शीश धरू कहूं जो कहनी हो। अब क्या बताते हैं कि गुरुजी तुम ना बोलियो चाहे लाख लोग मिल जाए कि परमात्मा है गुरुदेव प्रभु रूप परमात्मा गुरुदेव आप हमें ना बोलना, आपको हमारे जैसे श्रद्धालु तो एक से एक अच्छे मिल जाएंगे लेकिन हमें आप जैसे गुरुदेव नहीं मिल सकते। यानी आपके हृदय में इतनी तड़प हो कि ये भगवान मुश्किल से रह पाया, हे परमात्मा कैसे दया हुई, ऐसा मार्ग ऐसे गुरुजी के जो ना वचन सुनने को मिले, कहीं फिर गलती ना बन जाए और हम काल के जाल में ना फंस जाए, हमें मतलब इस तरह की प्रार्थना आपके हृदय में रह रहकर अंदर से उमंग सी उठे, हिलोर उठे आपकी। उसके लिए कहते हैं कि गुरुजी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जा, चाहे आपके लाखों से सो जा, हमें भूलना नहीं। हमारे जैसे शिष्य तो आपके पास बहुत हो जाएंगे, लाखों और करोड़ों भी हो सकते हैं, लेकिन हमने तो आपके अतिरिक्त दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। अब कहते हैं तुमरे विसारे के बने वे, तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं, कोई ठिकाना नहीं दिखता, कोई दूसरा संत नहीं पृथ्वी पे, और ब्रह्मा विष्णु शिव और ये नारद जैसे इनके हृदय में भी हमारे प्रति जगह निरी, क्योंकि हम सारा दिन इनकी पोल पाड़ा। ब्रह्मा विष्णु महेश की यथार्थ बात बतावा कि ये भगवान नहीं है, ये पूजा के योग नहीं है, ये नासवान है। और अभी तक अब जैसे कोई किसी के विषय में बता रहा था, एक किसी गांव का व्यक्ति शहर में रहा करता, उसने बता रखा महाराज जो ना 100 किले जमीन है, 3 ट्रैक्टर चल रहे हैं और उनका एक भी गा जमीन और घर का जो है ना ट्रैक्टर तो छोड़ बैल भी कोनी। तो उसके गांव का चला गया वहां पर पड़ोस में किराए पर लाकर उसने उसकी सच्चाई बता दी कि ना तो इसका किला एक एकड़ जमीन है और बैल भी नहीं, उसको भी ठेका पर दिया करें इसका ना खक भी। उसने उसका पता लग जा तो उसने फिर उसके साथ लड़ाई करी, यह स्वाभाविक बात है, वो तो चौधर बना रहा था, हांडी पाक रहा था। तो ऐसे ही अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश की जो महिमा इन संतों ऋषियों ने गाया की थी, इनका इसकी हवा तो भरी हुई है। अब हम बतावा सच्चाई जो इनके इतिहास में लिखा था, एक बार ठेस इन ताई भी पहुंचेगी ब्रह्मा विष्णु महेश और इन ऋषियों को। दास बता रहा कि कति अज्ञानी थे, दास नहीं बता रहा, इनके इतिहास में लिखा हुआ है। और ये मैं ऋषि कुवारे जनसाधारण से तो दुख तय कहते इनको, हमारे इनके हृदय में हमारे प्रति जगह रही नहीं। ठीक है, हम शरण कबीर परमेश्वर की होगी इसलिए इनकी बसा नहीं रही, हमें कोई हानि पहुंचा दे, हम पूर्ण परमात्मा की शरण में। एक भगत था, वो कह रहा था जी मैं अपनी बहन का चला गया, उनका जमीन अच्छी थी, वर्षा होगी और वर्षा होगी तो उनका जो जमीन थी वो बाढ़ने योग्य होगी, संवारने योग्य होगी, उनके एक ही 2 बैल थे, तो मैं अपने 2 बैल लेकर के अपनी बहन की वो खेत संवारने के लिए मदद करने चला गया अपना हल लेकर। तो मैं दूसरे खेत में संवार रहा था, वो बहन का बटे वो दूसरे खेत में हल जोत रहा था, काफी फैसला था हमारा आपस में। तो मैंने शाम दोपहर के समय बैलों को वृक्ष के नीचे बांध दिया और वहीं एक छोटा सा तलैया थी जोड़ी, उस जोड़ी में मैं चला गया अंदर ने। वहां क्या देखा कि एक मंडी सी बना रखी, 2-1 फुट ऊंची वो बना देते हैं, पितर पैतरा का स्थान है वो बना रखा, और वहां पर एक बेली गुड़ की दर रखी, एक दटी गुड़ बढ़िया वाला, वो पूजा करके गया था कोई दोपहर ने, और मेरा वहां जाना हो गया, मन ने वो गुड़ उठा के उस मंडी परते और फोड़ के वो बैलों का आगे डाल दिया। जब वो चारा खा रही थी छका दिए, कुछ आप खा लिया, बढ़िया गुड़ था, कुत्ता का मुंह लग गया नहीं था, दूर था वो खेतों में। तो वो सामने आ गया, तो कहते हैं थोड़ी सी देर के बाद एक 3 फुट का 4 फुट का एक व्यक्ति सा दिखाई दिया। वो कहता रात्रि के समय स्वप्न में वो दिखाई दिया मुझे, जिसकी उड़ा पूजा होया करती। वो कहने लगा कि तू एक तू यानी तगड़े की शरण में था, तो ठाडे की शरण, उनकी लैंग्वेज में बताता हूं कि तू ठाडे की शरण में था, नियाज तेरा बक्कल तारू हूं मैं, तेरा जान तो मारू और तेरे बैला न मारू, कि तू तगड़ यानी समर्थ की शरण में था तू, इसलिए बच गया ना, तुम्हारी दुर्गति करूं तेरे बैल मरे और गेला तेरे को भी खत्म करता। तो परमात्मा कहते हैं समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, कदे ना हो अकाज राम रंग होरी हो। इस समर्थ कबीर परमेश्वर की शरण हमने ले रखी है, हमारा अकाज ये कोई नहीं कर सकते, लेकिन ये राज्य कति नहीं हमारे थे। इसलिए कहते हैं कि तुम रे बिसारे क्या बने, अगर तुम भूल गए भगवान मारे गए के बनेगी। और शिव ब्रंच मुनि नारदा यानी नारद जैसे ऋषि, शिव ब्रंच विष्णु ब्रंच के ब्रह्मा जी ने कि इनके भी हृदय में ना जगह हमारे प्रतीत है, और आपने हम त्याग दिया तो हमने ठिकाना है कोई ना, ये खूब बकल तारेंगे फिर हमारा। और गुरु कब त्याग सकता है आपको, जब आप कति ढीठ हो जाओगे, 1 बाय 2 बाय 3 बाय 4 बाय है बार बार नाम खंड करोगे, फिर आप रिजेक्ट हो जाओगे, फिर चाहते भी रहना। तो इसलिए आप इस डर के मारे प्रभु के चरणों में सतर्क रहो, सावधान रहो कि कहीं भगवान पैर ना फिसल जा और काल का दाव लग जा। आपको साथ साथ ये फाउल पॉइंट बताए गए हैं। अब हम उस प्रसंग पर आते हैं। परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर प्रभु जी चारों युगों में आते हैं और प्रत्येक युग में वे एक पूरा जीवन एक मनुष्य सदृश रह करके जीवन पूरा करके भूमिका करके सशरीर आते हैं, सशरीर चले जाते हैं। सतयुग में परमेश्वर कबीर जी सतसुकृत नाम से अवतरित हुए थे, प्रगट हुए थे, और वो उस समय छोटी आयु में ही अपने इस तत्व ज्ञान का प्रचार प्रारंभ करने लगे, क्योंकि परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होते हैं। जब वो एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आते हैं तब एक लीला करते हैं, प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करते हैं और फिर उनको एक निसंतान दंपति उठाकर ले जाता है, उनकी परवरिश करते हैं। जैसे सतयुग में जो परमात्मा प्रकट हुए एक कमल के फूल पर, एक झील में, एक सरोवर के अंदर, वहां से एक विद्याधर नाम का ब्राह्मण और उसकी पत्नी दीपिका वो आ रहे थे, रस्ते में उनको वो बालक, वो निसंतान थे, वो बालक कमल के फूल पर दिखाई दिया, उस बच्चे को उठाकर ले आए, उनकी परवरिश की। उस बच्चे ने दूध नहीं पिया, जलपान नहीं किया और स्वस्थ ऐसे थे जैसे बच्चा प्रतिदिन किलो दूध पीता हो। 25 दिन हो गए उसने जलपान नहीं किया। तो उधर से उस ब्राह्मण दंपति ने, ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने बहुत दुख हुआ कि हे भगवान, मुश्किल से यह बालक मिला था, अब यह मरेगा। ऐसे ही परमात्मा ने लीला की और विद्याधर और दीपिका प्रभु से अर्ज करती रही। तो उस समय परमेश्वर ने वो जो विद्याधर और दीपिका थी वो भगवान शिव की उपासक थे, तो उन्होंने अपने अरुणों उन्हीं से, क्योंकि हम जिस भी इष्ट की पूजा करते हैं हमारा जो भी कोई मंगल होता है हम उसी की देन मानते हैं। अब इसी प्रकार वो भगवान शिव की पूजा करते थे, वे ब्राह्मण थे और सतयुग में ब्राह्मण, वेदों को जिसे आपने समझ रखा था, इन्होंने समझा था वो आपके समक्ष कल बता दिया था कि इन्होंने वेद ज्ञान नहीं था, फिर भी वेदों के अनुसार वो कोई शिव भगवान का, वेदों में शिव नाम लिखा है, शिव का शिव प्रभु की उपमा है, शिव का अर्थ होता कल्याण करने वाला प्रभु यानी मोक्षदायक। इन्होंने इस काल के पुत्र को शिव को ही मंगलकारी मान लिया और इसी की पूजा प्रारंभ कर दी। तो भगवान शिव जी वहां पर प्रकट हुए एक ब्राह्मण रूप में, तो उस शिव रूप ब्राह्मण से ऐसे चर्चा की, क्योंकि परमात्मा कोई भी कार्य करता उसको नियमित बनाकर ही चलते हैं, ताकि ये भक्त यदि परमात्मा आते ही निरे चमत्कार दिखा दे अनहोनी करने लग जाता, उसको जादूगर का नाम दे करके उससे दूर भागने लग जाए। काल का बड़ा भयंकर जाल है कि जो जादू जंतर है डांटता है, इतने करता है ये तो, और के और कुछ भी कर देगा, तुम्हारे बच्चों को बहका लेगा। तो इसलिए वो बच्चा दूध नहीं पी रहा था, तो उस शिवजी जो है ब्राह्मण रूप में उपस्थित था, उन्होंने ब्राह्मण ने उस शिव रूप रूपी ब्राह्मण ने उस विद्याधर ब्राह्मण और ब्राह्मणी से पूछा कि आप क्यों इतने चिंतित हो, कारण क्या है? तो उन्होंने कारण बताया कि ये बच्चा हमारे भगवान शिव की कृपा से हमें मिला है और आज ये 20-25 दिन से कुछ खा पी नहीं रहा है और ये मर जाएगा, इसमें ममता हमारी अधिक होगी, हम भी शायद जीवित ना रह सके। तो परमेश्वर कबीर जी ने उस ब्राह्मण ने ब्राह्मण रूपधारी शिव ने कहा कि वो बच्चा दिखाओ। ज्यों ही उन्होंने उस बच्चे को ब्राह्मण के चरणों में रखना चाहा, वो बच्चा एकदम ऊपर हवा के अंदर 3-4 फुट जमीन से ऊपर ऐसे स्थिर हो गए। फिर शिवजी ने उनको अपने हाथों में लिया, दोनों की आपस में वार्ता हुई और तब परमेश्वर ने कहा कि इन्हें कहो कि एक कवारी गाय लाए, उसके ऊपर आप हाथ रख देना, उससे ये दूध देवेगी और उस दूध को मैं पिया करूंगा, और वो आजीवन जब तक वो रहेगी दूध देती रहेगी, वो कभी गर्भ धारण नहीं करेगी। ऐसा ही हुआ, एक कवारी गाय लाई गई। कवारी गाय को आप समझ गए होंगे, जो कभी भी ना बच्चा उत्पन्न किया हो, कभी भी वो किसी पर गर्भ धारण ना किया हो, उसको कवारी कहते हैं। अब पुण्यात्माओं, ये जो ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान यानी सौसम वेद के अंदर लिखा हुआ है। अब इसका प्रमाण यदि हमें वेदों में मिले तो हमारा दिल डटे, हमारा यकीन हो कि सचमुच या तो सच्ची है बात है। अब इसके लिए आपको वेदों का प्रमाण दिखाना अति आवश्यक होगा, क्योंकि वैसे तो ये 5 दिन का जो सत्संग है, प्रभु की महिमा अवतरित अवतरण के विषय में ही विशेषकर हम आपको जानकारी देते रहेंगे, साथ में प्रभु की अन्य महिमा भी आपको विस्तार से बताई जाएंगी, क्योंकि हमें समय 5 दिन का मिल गया। वैसे तो ये महिमा एक लगातार एक वर्ष चलते रहे, प्रतिदिन सत्संग सुनते और सुनाते रहे, तो अभी एंड नहीं है प्रभु की महिमा का। फिर भी हमने काम चलाऊ, आपको हमें ज्ञान हो जाएगा, हम अपना जो ना मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे मोटरसाइकिल है या कार है, कार गाड़ी है, इसको चलाना सीख ले, ड्राइविंग सीख ले, और छोटे मोटे 2-4 आइटम होते हैं, तेल कहां से ऑन हुआ है, कहां से रिजर्व में लग गए, कहां इसका स्विच है, कैसे ये स्टार्ट होती है, कोई दिक्कत आ जाए तो कहां से थोड़ा बहुत हम उसको ठीक भी कर सकते, पूरा नहीं कर सकते, तो वो हमारा काम खूब चला देगी। तो हमने अगर इंजीनियर बनना है फिर तो लंबा समय लगेगा, लेकिन उस गाड़ी से हम काम ले सकते हैं, इतनी जानकारी प्राप्त करें, तो आपको इस राम नाम की गाड़ी चलाने योग्य, इसको प्रयोग करने योग्य ज्ञान ही दिया जाएगा। पूरा ज्ञान तो बहुत समय लग जाएगा आपको, उसकी आपको आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि मैकेनिक बहुत है, उनसे ठीक कराओ और अपना फिर मार्ग के चल पड़े। तो आपकी राम नाम की गाड़ी आपको दे दी है, चलाने योग्य शिक्षा भी आपको यहाँ दी जा रही है। डिफेक्ट आवे तो यहाँ बैठे हम मैकेनिक, यहाँ जाओ इनको ठीक फिर करके फिर चलती कर देंगे। अगर कोई दिक्कत आ जाती है, राम नाम खंड हो जाता है, कोई डिफेक्ट हो जाता है, तो आपको फिर आशीर्वाद से री उपदेश के द्वारा कई तरीकों से आपको फिर ठीक कर दी जाती है, आपकी गाड़ी फिर चल पड़ेगी। जैसे आपका भक्ति मन नहीं लगता है, कोई आपत्ति आ रही है, आप चिंतित हो जाते हो, तो आप यहाँ आते ही कई प्रकार के पाप होते हैं, कुछ तो संत के दर्शन से ही समाप्त हो जाते हैं, कुछ आशीर्वाद मात्र से नष्ट हो जाएंगे, आपकी रुचि बन जाएगी। और फिर भी कोई ज्यादा तकलीफ है तो आपका नाम खंड है, उपदेश दे दिया जाएगा, लेकिन जानकर उपदेश खंड नहीं करना नाम, उससे फिर भगवान रुष्ट हो जाएगा। ये जो दास आपको बता रहा है ये कहानी, जो परमात्मा की अमृतवाणी लीला, ये परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं अपने प्रिय शिष्य एक धर्मदास जी को बताई थी, और उनके द्वारा लिपिबद्ध किया हुआ वो अमृत ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है, उसी से आपको बता रहे हैं। और वही प्रमाण आपको दिखाते हैं कि जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है तो वो उस समय उसकी परवरिश कुंवारी गायों के द्वारा होती है। कुंवारी गायों अपने आत्मा, अब आपके समक्ष पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 को दिखाते हैं, जिसमें स्पष्ट किया हुआ है कि जब वो अमर पुरुष जब शिशु रूप धारण करता है, उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती, कुंवारी गायें करती है। अब देखिएगा ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 9, 10 और महर्षि दानंद सरस्वती की फीत लगाई है इन्होंने जो भी है, तो और ये विषय कुछ और है, बाद में बताएंगे। अब केवल इतना ही देखते हैं कि इसमें लिखा क्या है, ये कहां से प्रकाशित है। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसके मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और फिर मंत्र नंबर 9, मंडल ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9, इसमें क्या लिखा है संस्कर देखें। अभी इमम अधन्य उत्सरंती धेनु शिशुम शिशुम सोम इंद्राय पातवे। इमम माने उस, सोमम माने सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, सोमम, अब सोमम का अर्थ होता है उस अमर पुरुष को जो शिशु रूप धारण करके आता है। इन्हीं का अनुवाद पढ़े पहले, उसे सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से अधन्य, अभी माने पूर्ण रूप से, अधन्य माने अहिंसनीय बिना धनाई, अभी अधन्य यानी बिना धनाई गायें, बिना धनाई उसको कहते हैं जो जिसने कभी भी गर्भ धारण ना किया हो, बिना जिस गर्भ धारण ना किया हो, और अभी माने पूर्ण रूप से यानी कभी भी, जो अर्थात कुंवारी। अभी अधन्या धेनव गौए गौवे गौवे यानी तृप्त करती है। देखो इन तो यह है कि जिस व्यक्ति ने कभी रामायण की कहानी ना सुनी हो और तुलसीदास जी के दोहों का श्लोकों का अनुवाद करने लग जाएगा, अड़ंगा करेगा, ये वो ज्ञान हो ये कहानी हो तो वो श्लोक अपने आप अनुवाद होते चले जाते हैं। अब देखना ये इन गिल्ला बनेगी, इन सृष्टि रचना का पता नहीं था इन अनुवादकर्ताओं ने, महर्षि दयानंद और उसके अनुयायिया ने सारा गो अड़ंगा कर दिया इसका। अब देखो क्या है, इसका सच्चाई क्या आती है सामने। इमम माने उस, सोमम माने अमर पुरुष, यानी परमात्मा जो शिशु रूप माता शिशु रूप उस अमर परमात्मा जो शिशु रूप में धारण करता है कुमार अवस्था में होता है उस सभी प्रकार से अधन्य उसकी तृप्ति अभी अधन्य यानी पूर्ण रूप से कभी भी सांड के द्वारा परेशान ना की गई हो अर्थात कुमारी धेनव माने गौओं से होती है वो गौ में करती है इसका यो अर्थ था और ज्यादा लंबा चौड़ा है नहीं। इन्होंने अड़गम सड़गम कर जैसे हे भी लोगो जैसे मैं तो हवि बिजली के समान या क्या का के बना के धर दिया जबकि सिंपल सा था अग्नि तनुरसी विष्णवे त्वा सोमस्य तनुरसी दो अक्षर की बात थी। अब इसे सिद्ध हो गया कि इसका समर्थन हमारे वेद भी कर रहे हैं पवित्र वेद के परमात्मा जब बालक रूप धारण करके आता है उसकी परवरिश कुंवारी गौओं के द्वारा होती है कुंवारी गायों से होती है वो दूध देती हैं तब वो परमात्मा उनको और वो दूध उन माव कितना सतलोक से आए है सतलोक से आता था परमात्मा उसको ग्रहण करते थे। अब ये अध्यात्मक मार्ग है इन अज्ञानी ऋषियों और नाड़ी गुरुओं ने परमात्मा से होने वाले गुण तीन तमिल्ले को ना श्रद्धालुओं को फिर इन्होंने परिभाषा बदलनी शुरू कर दी कि भगवान पाप नहीं काट सकता परमात्मा वाह भाई वाह भगवान पाप काट दे तो फिर रह गया क्या कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। अब वो बेचारे श्रद्धालु उनके पीछे लगे रहे और वो क्या कहते थे जैसे दुखी आदमी जाते हैं दुखी व्यक्ति जाता है परमात्मा की तलाश में गुरुजी के पास जाता गुरुजी जाते ही कहता है क्या कष्ट है ये दुख है ये कर दिए ऐसा कर दिए 5 रुपये धर दे फलाना बोल दे ये मंत्र जाप करता रहना और जब कुछ भी नहीं होता है लाभ नहीं होता है फिर कहता है बेटा प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है ये तो तुझे तेरे प्रारब्ध में लिखा है तो भोग तुझे भोगना ही पड़ेगा। फिर वो क्रिया किस लिए बताई थी जो पहले जंतर मंत्र बताया था वो किस लिए बताए वो रोजी रोटी के लिए बताए कि धक्के खाएगा और तेरा काम चला रहा है तेरी पूजा होती रहे। अब भले पुरुषो वो क्या फिर कहते हैं बेटा ये प्रारब्ध का भोग तो तुझे भोगना ही पड़ेगा आपको भविष्य में दुख ना होंगे आगे सुख हो जाएगा। अरे तेरा गजब हो यो अब किसी के पैर में कांटा लग गया हो और उसको कोई सलाह दे राय दे कांटा तो भाई निकला नहीं जूता पैर ले रस्ते में फिर कांटा ना लगेगा अरे फूटे भाग तेरे पैर में कांटा लगे पैर में जूता पैर के दिखाओ कोई पहन नहीं सकता वो तो कांटा निकले और फिर भी मनमाने 2 दिन पाछे जूता सुवावे यानी पुण्यात्माओं आप यहां आओगे परमात्मा पमेर करेगा आप पर लगे हुए कांटों को अपनी कृपा से निकालना शुरू करेगा और फिर आपको ये सतभक्ति रूपी राम नाम का जूता दिया जाएगा फिर आप जब आप सुखी हो जाओगे जैसे किसी के पैर में कांटा लग गया जबरदस्त पीड़ा होती है फिर वो बहुत सावधानी बरत्या करे जूता नहीं निकाला जल्दी सी कदे फिर ना लग जाए। तो ऐसे ही जो दुखी प्राणी यहां आते आते सुख होगा क्यों भगवान के गुणों में लिखा किसी प्रकार का भी कष्ट आपके ऊपर किसी प्रकार का रोग है परमात्मा सब कुछ ठीक कर सकता है चाहे आप पर किसी प्रकार की आपत्ति है किसी प्रकार का काम बिगड़ा पड़ा आपका तुरंत ठीक करेगा ये परमात्मा के गुणों में लिखा है। और ये अज्ञानी ऋषि महर्षियों ने अपनी दंत कथा बनाकर लोगों को भ्रमित कर दिया कि भगवान ऐसा नहीं कर सकता भगवान नरसिंह जी जो सेठ था उसकी हुंडी यानी उसका ड्राफ्ट कैश भगवान ने आके नहीं किया ये झूठ बोलते हैं ये सब बनावटी बातें हैं बकवादे हैं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो ये भोले व्यक्तियों ने सोचा भी महर्षि जी और गुरु जी ये बता रहे सत्य होगी तो उस अज्ञान सिद्धांत के आधार पर ये जनता नास्तिक होने लगी गोटी सूटी लाने लग गए या भक्ति से विमुख हो गए और लाभ कोई मिला को नहीं जबकि भगवान के गुणों में लिखा है कि परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है प्रत्येक प्रकार के कष्ट को दूर कर सकता है प्रत्येक प्रकार के रोग को भी नष्ट कर सकता है। अब भगवान के गुण कहां लिखे हैं वेद में और सवसम वेद में चारों वेदों में और सवसम वेद में। अब प्रसंग चल रहा है कि इन अज्ञानियों ने गठा बठा दिया कि परमात्मा ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता। अब आपको देखो ज्ञान तो परमात्मा के परिचय के विषय में आपको मैं कंटिन्यूसली शब्द गा के अन्य कथाएं सुना करके काफी इंटरेस्टेड बना सकता हूं, लेकिन ये दास चाहता है कि आपको साथ साथ की साथ सद ग्रंथों से परिचित कराऊं ताकि आप फिर मारना खा जाओ, इन काल के दूतों के हाथ ना लग जाओ। इसके लिए देखिएगा यही ऋग्वेद। वैसे ऋग्वेद इसमें दिखाएं पहले, जो आपको पहले वाला दिखाया था, अब ये वही है प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। इसमें चलिएगा सूक्त नंबर 10 मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंडल 10 और 161 सूक्त का मंत्र नंबर 2 ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 और यहां लिखा है इसका अनुवाद। यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है, यदि अथवा सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप पहुंच गया ही है तो भी उस रोगी को इबीस ने मैं वैद यु वैद घसोट दिया। अब ये वेद कोई दवाइयां की किताब को ना, ये भगवान के विषय में जानकारी है। ये जो है आयुर्वेद की नहीं है, ये आयुर्वेद नहीं है, ये ऋग्वेद है, भगवान के विषय में जानकारी। आयुर्वेद में जड़ी बूटियां की लिखी है, लेकिन इसमें तो भगवान की ही महिमा गाई गई है। भगवान ऐसा कर सकता है। इन्होंने ऊट पटांग करके महर्षि दानंद वाली सोच के भगवान रोग राग नहीं काट सकता, दानंद ने यह छुरी ठोक रखी इनके अंदर, भगवान कुछ नहीं कर सकता। जब भगवान ईसा अपंग है तक गाडांगे उस भगवान नाम कौन तलाश करेगा उसकी, जब कुछ कर नहीं सकता। तो इन्होंने इसलिए यहां लिख दिया मैं वैद्य। पढ़ने वाले ने सोचना कि वैद्य के बारे में लिख रखा है, वैद्य तरह काटे दे भाई ठीक है, हाँ ऐसे ही है। अब और दिखाऊंगा, प्रमाण दूंगा आपको, और भी महापुरुषों ने जो महर्षि दानंद के ही अनुयायी है उन्होंने ठीक अनुवाद किया है। एकादा जो घना जिसके घने वेद बक्के थे ना, उन्होंने किसी ने टोक टाक दिया होगा भाई लिख रखा भगवान वेद का भगवान रोग काटे, तो उन्होंने फिर चेंज कर दी इसमें, पहले शुरुआत में ठीक किया होगा छापा होगा। अब देखो उस रोगी को मैं वैद कष्टप्रद, ये वैद नहीं है, उसको मैं यानी भगवान कष्टप्रद रोग के पंजे से छुड़ा लाता हूं और 100 शरद ऋतुओं तक यानी 100 शरद ऋतुओं माने 100 वर्ष तक जीने के लिए इसको बलयुक्त करता हूं। ये तड़ंगा के रखा इनने और इन्हीं के द्वारा, इन्होंने बाद में चेंज किया वैद, सिर्फ वैद शब्द गलत लिखा है। अब देखो इन्हीं के द्वारा महर्षि दानंद जी के अन्य अनुवादकर्ताओं ने कैसे किया है, देखो ये एक बड़ा साइज में लिपिबद्ध किया है, यानी छपाया से बुक का साइज बड़ा बना रखा है, बाकी अनुवाद उसी का है। ये कहां से छपा है और देखिएगा, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम लेखराम नगर इब्राहिमपुर मुखमेलपुर दिल्ली, दयानंद संस्थान नई दिल्ली का प्रकाशन, ये नई दिल्ली से प्रकाशित है। ये देखिए नीचे इसकी भूमिका में लिखा है, महात्मा वेद भुक्सु भारतेंद्र नाथ दान संस्थान करोलबाग नई दिल्ली से, प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी। अब इसके उसी मंडल को देखते हैं सूक्त नंबर 10 मंडल नंबर 161, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 और ये मंत्र नंबर 2, ये दो इसमें लिखा है कि यदि यदि किसी रोगी का जीवन की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे सत वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ में क्लियर किया है, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से तो तब भी गया है तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर सत यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। बिल्कुल सही है, इन्हीं के द्वारा दूसरे अनुवादकर्ता ने ठीक किया है, क्योंकि ये थोड़ा व्यक्त था और ये सार्वज्ञ की देशिक आचार्य प्रतिन सभा के ये वेद गणे व्यक्ति के, तो किसी ने पढ़ के समझदार ने टोक दिया, मैं ऋषि जी त्यू कह हर इसमें लिख रखा ऐसा तो बदल दो बड़ा वैद लिख दिया, वैस अब चक्कर काटने जाओ, को वैद लिख रखा वैद काटे, अरे सेंटेंस देखो, ये कोई दवाइयां किताब नहीं है, ये वेद है, प्रभु की महिमा गाई गई इसमें। अब और दिखाता हूं आपको इसमें आगे क्या लिखा है, इसमें आगे लिखा है 5वें मंत्र में, इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 10 के सूक्त 161 के 5वें मंत्र में परमात्मा कहता है कि हे पुनर्जन्म प्राप्त प्राणी, के परमात्मा की शरण में आने से यदि तेरा जीवन नष्ट, तेरा आगे शेष जीवन ही ना रहा हो और तेरी मृत्यु भी हो जाए, तो भी मैं तुझे पुनर्जीवन दे दूं। हे पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, आगे देखो, एक जीवन तो प्राप्त हो गया, फिर आंख नाक अंग हाथ पैर सब ये भी तो चाहिएंगे, यदि आगे तेरे संस्कारवश आंख भी नष्ट होनी हो या कितने टांग कटनी हो, कुछ और भी हानि होनी हो, तो मैं तुझे तेरे सर्व अंगों की रक्षा करूंगा। हे पुनर्प्राप्त प्राणी, तू मेरी शरण में समर्पण हो और जैसे भी मेरा संत तुझे विधिवत साधना बताए सत साधना कर, और फिर मैं तुझे मिलूं, प्राप्त भी होऊंगा और तेरे सभी अंगों की मैं रक्षा आजीवन करूंगा, आंख भी जानी हो तो भी तेरी आंख ठीक कर दूंगा। ये देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161, ये आपने दूसरा मंत्र पढ़ा, अब पांचवा देखो, इसका अनुवाद यहां किया है। हे रोगी, मैं तुझे रोग से मुक्त करूं और तुझे मैं पाऊं यानी प्राप्त भी हूं, मिलूंगा तेरे को मैं, तू पुनः आ यानी समर्पण आ समर्पण कर। हे नव जीवन के धारक अर्थात पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, नवजीव तुझे मिला है, हे सकल अंग युक्त, तेरी चक्षु आदि इंद्रियों और सारी आयु तुझे दू। इसका अर्थ तो सिंपल सा ये बनता है, जैसे दास ने आपको अभी बता दिया कि हे पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, तो मेरी शरण में समर्पण हो। अपुण्य आत्माओं, जैसे कोई ऐसे बहुत से यहाँ पर कई हजारों की संख्या में ऐसे भक्त बहन भाई हैं कि जिनके कति अंतिम सांस गिने थे, कैंसर और बरानी के हो रही थी, अब वो कति स्वस्थ हो गए। अब उनके लिए कह रहा है कि तू समर्पण कर मेरे अमीर। समर्पण का अर्थ है कि जीवित मर अधिक से अधिक प्रभु की भक्ति कर, सत्संग में आया कर। यदि आप उस दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते तो ये तुम्हारे काम को कौन करता? परमात्मा आज तुम्हारे साथ है, मोक्ष प्राप्ति के लिए आपने अधिक से अधिक सत्संग अटेंड करना चाहिए। इसका यही उद्देश्य है कि हे पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, तो मेरे शरण में आ यानी समर्पण भाव से लग, और फिर तो मैं तुझे आगे तेरे और भी जो कुछ दुखाने हैं उनको भी दूर करूंगा। आगे देखो, अब बहन बेटियां भाई बच्चे दुखी हैं, विशेषकर बहनें ज्यादा दुखी होती हैं, किसी का पति शराब पीता है, किसी का या कोई और किसी कारण से दुखी करते हैं, तो परमात्मा कहता है मैं उन्हें भी सीधे कर दूंगा यदि आप मेरे समर्पण रहोगे, तुम्हारे सब बाधाओं को दूर करूंगा। अब देखो उसी का वेद समर्थन कर रहा है। अब यही ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 162 में देखो, ये 63 आगे शुरू होता है, ये 62 है, यही 162 में क्या कहा है इस पांच में, 161 के पांच में ना 62 के पांच में, हे नारी जो तेरे पास तेरे भ्राता के रूप में अथवा पति से व प्रेमी बनकर प्राप्त होता है और जो तेरी प्रजा का नाश चाहता है, हम उसे यहां से भगाएं। अब इसका वास्तविक अर्थ तो कुछ और बनता है, फिर भी ये कुछ इसमें लवैसी ला रखी है बात इसने। इसका कहने का भाव ये है कि ये थी जैसे कबीर, ये धर्मदास जी थे जो कबीर परमेश्वर के परम शिष्य थे, जब ये मालिक आए हुए थे तो उनके एक काल ने अपना दूत बेटे रूप में भेज रखा था नारायण दास। वो बेटे रूप में नारायण दास पहले ही इन एडवांस भेज दिया था कि यो भक्ति कर करण का आदमी दिखा है और कभी भगवान आए थे उस तत्वदर्शी संत से की हुई कमाई युक्त है और इसके घर में काल ने अपना दूत भेज दिया पक्का कि यो इसने भक्ति करण नहीं देगा और इसकी ब्रह्म माटी रखे। और पुत्र पिता की पुत्र में मोह घना होता है तो इसलिए वो नारायण दास भेज रखा था। तो कबीर परमेश्वर जब धर्मदास को समझा रहे थे, धर्मदास जी परिचित हो गए सतलोक में, भगवान को देख भी लिया तो समर्पण हो गए, प्रभु आप पूर्ण परमात्मा है। फिर अपने जब स्वयं ज्ञान समझ में आ जाता है तो ये भक्त ने सोचा अपने भाई ने भी कह दूं, अपनी बहन ने भी बताऊं, पत्नी को भी बताऊं, पति को भी बताऊं, बेटे ने भी लाऊं शरण में, बेटी को भी लाऊं। तो नारायण दास अकेला ही पुत्र था। अब धर्मदास ने सोचा इस अपने नारायण दास बेटे को भगवान के चरणों में लगा दूं ना तो काल के मुंह में जाएगा। तो नारायण दास को धर्मदास ने खूब समझा, बेटा भगवान आए हुए हैं। तो नारायण दास को क्यों, तो काल का दूत था बेटे रूप में, कहने लगा पिताजी तेरा दिमाग खराब हो गया बुढ़ापे में, सारी उम्र तूने कृष्ण राम की गीत गीत गुण गाए, राज तो 60 साल की उम्र में तेरा भेजा खराब हो गया, एक जुलाहे धानक को तू भगवान मान पर बैठा, ऐसी बेउदी बात और गाड़ दे, गुंडा है, बदमाश है, हमारे पैसे को हड़प करना चाहता है, हमारे पास पैसे गणे इसलिए धक्के खावा, यहां तीसरे दिन आ बैठे। अब धर्मदास रोवे बतेरा हंदंत, बेटा ऐसी बात नहीं है, रहियो भगवान आए। तो धर्मदास जी ने अपने गुरुदेव उस परमेश्वर कबीर जी से कहा, प्रभु मेरे बेटे ने समझाओ, ये काल के मुंह में जाओगा, नालायक मानता को जा। अब नारायण दास को कबीर साहब ने उनको तो मालिक था, परमात्मा को पता था कि यू कोनी मानन का, यू काग का है, कोयल का कोनी। तो उसने परमात्मा ने भी औपचारिकता से जैसे समझाते हैं भाई धर्मदास के न्यू मन में ना, कबीर परमेश्वर ने मेरे बेटे को ना समझाया, मान जाता है, बहुत समझाया, कई बार आए जय बार समझा, और वो मानने जो के पढ़ा रहे तू पता है जिसा तू ज्ञान जानता है, मत बात करे मेरे, मेरा पिताजी को तेने बहका लिया, तो पैसे ठगना चाहता है। अब धर्मदास रोए के गुरु परमात्मा आप दया करो, तो गया काल के मुंह में। तब परमेश्वर बोला भाई धर्मदास यू तेरा बेटा को ना तेरा दुश्मन है, यू काल ने काल का दूत भेज रखा है, तो ना समझ माई नो देखे गुरु जी कहने क्यों बेटे में ममता गणी। तब परमेश्वर ने कहा बोला तेरे नारायण दास ने, उसने सोची ले परमात्मा इज्जत करेंगे, अपनी रजा बख्शेंगे, इसको सेट करते होंगे। वो बुलाया नो आते हैं, हाँ के बोल बोल के कहे, जब परमात्मा ने ऐसे कर दिया और कहा देख धर्मदास तेरे पुत्र की सकल, वो अंदर जो ऊपर कवर था बेटे का था, अंदर काल बैठा था उसमें, वो काल था, काल का दूत भेजा हुआ था, तो अंदर तो वो अंदर दिखा, फिर दिव्य दृष्टि दे दी परमात्मा ने धर्मदास को, उसको वास्तविकता देखी तो ऊपर कवर बेटे का, अंदर तो ये काल है और इसी लंबे दांत भयंकर रूप और नो दिखे। धर्मदास बोला जा बेटा जा, डर गया अग्नि सचमुच केरा केस आ गए, जा बेटा बढ़िया था। ने बोला भगवान यू किस है, क्या क्या है ये? परमात्मा बोले भाई तू मेरी आत्मा था बेटा, पिछले जन्म में तो मेरे साथ था जब तेरा जन्म था, लेकिन तू भक्ति हीन हो गया था, मेरे से दूर हो गया था बेटा। परमात्मा कहते हैं जो जन हमारी शरण है ताका हूं दास, गेल गेल ला गया फेरू जब लग धरती आकाश। अब तेरे को छुटवाने के लिए आया था, काल ने पता लग गया कि यू जागा बिका इसकी भक्ति पिछली बहुत है, तो बेटा इसलिए यू काल ने अपना दूत भेज रखे तेरे घर में। तब ने बोला जी मेरा पीछा छुटाओ बीमारी थे। फिर चिंतित रहने लग गया कि मेरा बेटा तो काल का कुल हो गया। फिर यो कहने लगा भगवान मेरा तो काल का कुल हो गया है, मेरे कुंभ में तो मेरे काल के दूत पैदा होंगे, मारे या कुल की बीमारी और लाग रही है कि मेरी संतान और मेरा गठ वंश चले, वो वंश बता के सिर पदर के नाचेगा उस वंश ने, मेरी मृत्यु होगी। और मेरी मान लीजिए आज एक गांव में एक बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है जिसने पाना बोलना है थोड़ा महुला, तो एक व्यक्ति की संतान है, स्टार्ट एक से हुई थी, अब वो 500 तो घर हो गए और उसमें मेरे ख्याल में 2500 व्यक्ति हैं, और वो जो सबसे पहले वाला व्यक्ति है जिस तो स्टार्ट होया था कुल, वो मन मन गधा बन रहा होगी कर्म अनुसार, अब वो कुल उसने के सिर पर रहेगा, के सहायता मिली इसकी, ये एक काल का फैलाया हुआ जाल, इसको भी समझना हमने साथ ही साथ। लेकिन उस समय उसके वह भी बीमारी थी, मेरा कुल तो मेरा खानदान तो बिगड़ गया, रोज चिंतित रहे। परमात्मा कह बेटा वजन कर, हाँ जी करो हूं, और अंदर तो भाई केरा होगा, अब वो टेंशन होगी इसके। परमात्मा ने सोची और मरेगा बेटी का बाप ना यू भक्ति करे इस बेटे और खानदान के मुंह में, तो परमेश्वर कहते हैं सोचल सी दर मैं करूं अपने जन के काज। ने बोला परमात्मा बोले अच्छा भाई धर्मदास मैं आशीर्वाद देता हूं कि तेरे एक पुत्र होगा जो भक्ति युक्त होगा, अच्छी आत्मा का होगा और अपना पंथ स्वीकार करेगा। हे गुरुजी अब क्यों करोगा, 60 साल का हो गया और आपकी भक्तनी कभी बालक होने बंद हो गए, मासिक धर्म भी नहीं होता, क्यों कर मानू। परमात्मा ने सोचे तो कत्ती गया काम, तर भक्ति करे नहीं यो भी फंस गया। तो परमेश्वर ने अपनी शक्ति से एक बालक आसमान से आया और उसके आंगन में खेलन लग गया, लेटा हुआ पैर दस पंजे मुंह में गुट्ठे मुंह में दिया करे। ने बोला देख युवा होगा तेरी पत्नी का 10वां महीने पैदा होगा, इसका नाम तू चूड़ामणि रखना। जब थोड़ा सा दिल डटा लाला जी का एक सचमुच है कहा सचमुच है, फिर बिना जचक भी हो को करगा 60 साल की उम्र पे पत्नी बच्चे उत्पन्न करने योग्य रही नहीं, मालिक क्या नहीं कर सकता, सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम रही ऊट भूत जब त्रास निवार चित्रगुप्त के कागज पाड़े। अब उसके संस्कार में काल ने तो एक पुत्र लिख रखा था, परमात्मा ने एक पुत्र भी दे दिया। 10वें महीने लड़का पैदा हुआ, सुंदर लड़का अच्छा शील स्वभाव का, और उससे धर्मदास का फिर कुल चला और आशीर्वाद दे दिया कि चिंता ना कर तेरे 42 वंश तक 42 पीढ़ी तेरा वंश चलेगा, फिर नहीं रहेगा 42। तो इस प्रकार तो यहां वही कहा है कि तेरे आगे चल के भी इसमें काफी निर्णय दिया हुआ है कि यदि तेरा को भाई पति पुत्र, अब जैसे एक प्रेमी बनकर ये शत्रु भी होते हैं, बहुत से शत्रु होकर के कोई पिछले जन्म का लेन देन करते हैं, जैसे हमने बहुत से प्रमाण देखे हैं कि लड़कियां बेटी बहनें किसी व्यक्ति के साथ मोहब्बत कर लेती हैं, बाद में फिर वो छोड़ छाड़ जाते हैं, वह ब्रेन मैटी हो जाती है, रोती फिरती है, वो किसी और निकम्मा कहीं, क्योंकि दुष्ट आत्मा तो फिर दुष्ट कर्म ही करता रहता है। तो ऐसे कहता कि तेरा प्रेमी बनकर भी तुझे ऐसा होता है, उसको भी मैं जब तू नाम में जुट जाओगे तो आपके बैड संस्कारों को मैं ठीक करता चलूंगा, सेट कर दूंगा। यानी कहां तक वेदों में कितना निर्मल ज्ञान दे रखा है, कहां तक परमात्मा सहयोग देता है, अरे नकली संतों ने इन्हीं की आड़ में और सारा ही अज्ञान ठोक दिया। आगे देखो 163 सूक्त में इसमें लिखा है मैं तेरे नेत्रों में से एक्समा यानी जो बगाऊं, तेरे नेत्रों में से यक्ष्मा जो त्रिआंखों को नाश करने वाला रोग है उसको भगाऊं, तेरी नासिकाओं और कानों से और तेरी ठोड़ी से भी यक्ष्मा को मिटाऊं, यानी नाश करने वाले बर्बाद करने वाला कोई रोग है, सिर से यक्ष्मा और मस्तिष्क से एवं जीव से भी मिटाऊं, मिटा दूं। बताओ और क्या रह गया। कहते मैं तेरे किसी कहीं भी तेरे को अक्षमा का अर्थ होता है वैसे नासक, अक्षमा वैसे इसको कहते हैं जैसे अक्षय रोग जो नाश करता है। हम टीबी को जो है ना लाइलाज मान्या करते हैं, अब टीबी लाइलाज नहीं रही, ऐसी खोज होगी है, तो अब कैंसर होगी अक्षय। अक्षय माने जो नाश कर दे, नष्ट कर दे, बर्बाद कर दे, जिसका अभी तक इलाज नहीं बन पा रहा। जब परमात्मा कहता अक्षय रोग यानी जो तेरे किसी भी अंग का नाश करने वाला हो और तेरे पूरे शरीर को बर्बाद कर दे, उसने भी ठीक कर दू। आगे देखो दो नंबर में 163 के 110 नंबर मंडल के और सूक्त नंबर 163 और मंत्र नंबर 1 आपने पढ़ लिया, दूसरा देखो। ये दूसरा, हे रोगी तेरी भुजाओं में बैठे यक्ष्मा को ग्रीवा के सिरों से ऊपर की ओर यानी गर्दन से ऊपर जाने वाली धमनियों यानी नाड़ियों से अस्थियों से व संधि भाग से कंधों और बाहुओं से दूर करूं। तेरे कंधे में दर्द हो या किसी प्रकार का भयंकर रोग हो, गर्दन में हो, गले में हो, ऊपर किसी प्रकार उसको ठीक करूं। आगे देखो तीसरे में, तेरी अंतड़ियों से आत्मा में खराबी हो, गुदा नाड़ियों में यानी तेरा बवासीर वगैरह हो, एवं सथूल आंतों से हृदय से तेरा हृदय रोग हो, तेरे दोनों गुर्दों से यकृत यानी लीवर से और हृदय से उदर से उदर सचित अन्य भोजन पाचक तिल्ली आदि यंत्रों से यक्ष्मा को हटाऊं। आगे बहुत कुछ लिख रखा, कति एक अंग के ऊपर कहते मैं भगवान सब कुछ कर सकता हूं, और पुण्यात्मा ननाड़िया निशा उल्टा पाठ पढ़ा रहा, क्यों भगवान कुछ नहीं कर सकता, भगवान रोक अटैक रहे हैं, वो कहां उड़ जाओ रोक अटैक दे। ये भगवान की महिमा में सारा कुछ लिख रखा है कि वो क्या के कर दे, कौन कबीर देव, वो कबीर प्रभु। अब फिर हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से आए थे और उस समय उनकी परवरिश जब वो बालक रूप में थे तो कवि कवारी गायों से हुई थी। ये वेद के मंडल या ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 9 में स्पष्ट किया।